श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 2। लंबा तात्पर्य है, समाप्त करने में थोड़ा समय लगेगा। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मयम सुरसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। इन सभी के बारे में श्रील प्रभुपाद चर्चा करेंगे आगे, तो मैं इस पे अभी कुछ नहीं बोल रहा हूं। तात्पर्य में जाते हैं। भगवद गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा या राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैश्वानर हैं। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह नवम अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह यह दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। एक चीज आप देख सकते हैं कि इस जगत में लोग हर प्रकार के ज्ञान से संबंधित हैं, सिवाय इसके कि वो कौन है। तो आप देख सकते हैं कि आत्मा का ज्ञान बहुत गुह्य है, और इसलिए भी गुह्य है क्योंकि सुनने के बाद भी लोग समझ नहीं पाते। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान है आत्मा का, जो भगवान कृष्ण से विशिष्ट संबंध है, जिसके द्वारा और जिसके अनुसार विशुद्ध भक्ति की जाती है, और जिस विशुद्ध भक्ति के माध्यम से भगवत साक्षात्कार होता है, न कि केवल परमात्मा और ब्रह्म का। ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ गुह्य ज्ञान है, इसीलिए इसको राज विद्या कहा गया है। शांडिल्य विद्या इत्यादि के समान ये अन्य विद्या नहीं है। अन्य विद्याएं भी हैं, जैसे शांडिल्य विद्या, वैश्वानर विद्या, दहार विद्या, लेकिन उनके समान विद्या नहीं है। ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है, जो कि शाश्वत रहती है और यही शुद्ध भक्ति की विद्या है। समस्त गुह ज्ञान के इस राजा राज विद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। सामान्यतः लोगों को इस गुह ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहां तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं, और ये सभी लोग भूले रहते हैं कि वो हैं कौन। काफी इंटरेस्टिंग है ना। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहां आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती हो। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। जिस शरीर का आदमी इतना पोषण करता है, जैसे ही आत्मा उसे चली जाती है, एक दिन भी उसको रखा नहीं जाता, तुरंत उसको या तो शमशान में जलाने के लिए भेज देते हैं, और या फिर जमीन में गाड़ देते हैं, और कोई दुर्गति कर दी जाती है। किसी वस्तु को जलाते हैं और जलाने में कोई दुख भी नहीं हो रहा, तो उसका अर्थ यही है ना कि महत्वहीन है। इस समय भी ये महत्वहीन है। बस अगर महत्व है, तो इसके द्वारा हम अगर भक्ति का संपादन कर सकते हैं, तो उसका महत्व है, अन्यथा कोई महत्व नहीं है। तो भी लोग आत्मा की चिंता ना करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं, और इसका क्या प्रमाण है यदि अधिक महत्व प्रदान करते हैं, क्योंकि शरीर की आकांक्षाओं, शरीर इसकी आवश्यकताओं में ही अपना सारा समय लगा रहे हैं, जबकि खुद अपने लिए, आत्मा के लिए व्यक्ति न्यूनतम कर रहा है। अगर करता भी है तो केवल नाम मात्र को और फिर दिखावे के लिए करता है। आत्मा के उत्थान के लिए लोग प्रयत्नशील नहीं है। भगवद गीता में द्वितीय अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अनिश्वर। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरणा। ये सब हम लोग समझा चुके हैं पूर्व के अध्यायों में, इसलिए इस पर हम बहुत व्याख्या नहीं कर रहे हैं। यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल यह जान लेना कि आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार है, अविनाशी और नित्य है, इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती कि मतलब आत्मा वस्तुतः है क्या। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है। यानी आत्मा के पास भी इंद्रियां हैं जिसके द्वारा भगवान की वो सेवा कर सकता है, इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए लोग मान लेते हैं कि आत्मा की इंद्रियां नहीं है, आत्मा तो निराकार है और निराकार में जाके लीन हो जाएगा। प्रायः भारत में यही सिद्धांत चलते हैं, किंतु यह वास्तविकता नहीं है। यह आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है। इसी बात में हो रही थी बात, अभी हम लोग भक्ति वृक्ष में भी चर्चा कर रहे थे कि आत्मा की इंद्रियां हैं, इसका अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि आत्मा में भोक्ता की प्रवृत्ति है और व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा भोग करता है। तो आत्मा की जो इंद्रियां हैं वो एक्चुअली स्पिरिचुअल हैं, तो इसलिए ये सोचना कि ये जाकर निराकार में लीन हो जाएंगी, ये ज्ञान का द्योतक है। ऐसे लोगों को पता नहीं है कि निराकार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, वहाँ भी आत्मा अपने अस्तित्व को बनाए रखती है, लेकिन भगवान से सेवा सुख प्राप्त ना होने के कारण व्यक्ति वापस गिरता है। यह सदैव सक्रिय रहता है, यदि वह शाश्वत है तो शाश्वत सक्रिय रहता है, और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप अध्यात्म ज्ञान के गुह्यतम अंश हैं। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। ये आत्मा की क्रियाएं हैं क्या? आत्मा की क्रियाएं हैं शुद्ध भक्ति, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाली वो क्रियाएं जो करती हैं, जैसे श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो क्रियाएं हैं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए सीधे की जाती हैं, केवल इनका फल मात्र भगवान को समर्पित नहीं किया जाता, तो ये सब आत्मा की क्रिया। और इनको, इन क्रियाओं को आध्यात्मिक जगत में भी आत्माएं कर रही हैं, जो कि पवित्र आत्माएं हैं, जो भगवान की नित्य सहचरी हैं। तो इसीलिए वैकुंठ के कार्यकलाप को हमें यहाँ करने का मौका मिल रहा है, कितना बड़ा भाग्य है जो लोग शुद्ध भक्ति का इवन अभ्यास भी कर रहे हैं। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल हैं। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। उदाहरणार्थ जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता, इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर वह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब इसमें फूल आते हैं, फल लगता है, और तब बीज बोने वाला व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इससे भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसका बीज पड़ जाता है, और उसको दंड भले अभी तुरंत ना मिले लेकिन उसका दंड आके निश्चित रूप से मिलेगा। जैसे कि एक पेड़ के बीज को जमीन में डाल देंगे तो कालांतर में समय आने पर निश्चित रूप से फलीभूत होगा। जैसा कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों को का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्दों में जो लोग भगवत भक्ति में लगे हैं वे समस्त कर्म फलों से पहले से ही मुक्त हुए रहते हैं। इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयन्ते विष्णुर्भक्तिरात्मना। इस उदाहरण को समझिए, इस सिद्धांत को समझिए। प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं भले भगवान की बात को कूट करते हुए, ये शाम तो अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम तिद्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम दृढ़व्रता। तो अब आप ये देख सकते हैं, भगवान कह रहे हैं कि जिन लोगों की पाप राशि खत्म हो चुकी है और जिन्होंने पुण्य कार्य किए हैं वही दृढ़ता से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगते हैं। तो यानी इसको उल्टा देखा जाए, अगर हम इफेक्ट देख रहे हैं तो उसके कॉज का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर भक्ति में बहुत दृढ़ता से भक्ति कर रहा है, रोज साधना भक्ति करता है दृढ़ता से, तो उसका अर्थ यही है कि उसके सारे पाप समाप्त हो चुके हैं। किस आधार पर? इस आधार पर कि भगवान जो बोल रहे हैं कि जो लोग पूरी तरह से पुण्यात्मा है और सारे पापों से निवृत्त हैं, वो व्यक्ति भक्ति में निष्ठा को प्राप्त होते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसका मतलब है कि निश्चित रूप से उसने 12वीं पास किया हुआ, ये बात है। अब यहाँ पे एक श्लोक कोट किया गया है पद्म पुराण में कि पाप किसी भी अवस्था पे हो, प्रारब्ध अवस्था में हो, कूट पे हो, बीज में हो, या फल प्रस्तुत करने के लिए आ गया हो, वो सब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, अगर आचार्यगण इसमें बड़े एक अच्छी बात बताते हैं कि जैसे बहुत सारे पत्ते एक के ऊपर एक स्टैक कर दिए जाए और उससे एक सुई पिरोई जाए, तो आप ये कह सकते हैं कि एक क्षण में सारे पत्तों में छेदन हो गया, लेकिन सूक्ष्म रूप से विचार करें तो एक के बाद एक पत्तों पे छेदन हुआ है। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में हम लगते हैं तो क्रम से धीरे धीरे करके हमारे कर्मों का नाश हो जाता है, लेकिन व्यवहारिक भाषा में हम बोलेंगे तुरंत ही नाश हो गया। क्यों? क्योंकि शाश्वत समय से अगर हम कंपेयर करें, शाश्वत समय में ब्रह्मा जी का दिन भी क्षण की तरह है। तो अगर हमारे को समय लगता है, जो हमें लग रहा है कि बहुत समय लग रहा है, कुछ समय लगता भी है, तो शाश्वत समय में तो कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ बोला जा रहा है क्रम से नष्ट होता है। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं, उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धि कारणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रमम उत्तमम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है, तमस का अर्थ ये भौतिक जगत इस अंधकार है, और उत्तमम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे हुआ। भक्तिमय कार्य को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए, यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित रहते हैं। अर्थात भक्त कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर कृष्ण भावना में कर रहे हैं, चाहे मंदिर का मार्जन करें, चाहे हरि नाम जप करें, चाहे वो भागवतम पढ़ें, चाहे वो गीता पढ़ें, चाहे भगवान के लिए भोग बनाएं, ये सारे कार्य लगते बहुत सामान्य है बाह्य लोगों को, लेकिन एक्चुअली इनमें बहुत शक्ति होती है और ये सारे कार्य पराशक्ति के अंतर्गत संपादित किए जाते हैं, और इसको करने में हमें प्रगति के गुणों का दूषण नहीं लगता, अपितु पूर्व के दूषण भी सब समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो भक्ति है, भक्ति की क्रियाएं हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं और वो स्वयं ही सब कुछ प्रकाशन करने वाली हैं। कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि इसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है। तुरंत ही मतलब बहुत जल्दी ही सारे पाप कर्म से उस निवृत्ति हो जाती है, बल्कि वो दोबारा उसे पापों को करने में उसकी रुचि भी नहीं होती है। और विशिष्ट रूप से हरि नाम से एक रस मिलता है जिसका अनुभव, जिसका व्याख्यान सामान्य शब्दों में नहीं किया जा सकता। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है, यानी कि ऐसा नहीं कि हम केवल श्रद्धा ही रख रहे हैं, स्वयं ही अनुभव कर रहे हैं हरि नाम के सुख को। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है या कृष्ण भावन के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। अर्थात वह अनुभव करता है कि भगवान से उसकी प्रीति बढ़ रही है। इस पर एक अच्छी बात बता रहे थे, भक्त की भक्ति करते करते जब हम विभिन्न कार्यों में लगे रहते हैं भक्ति के, तो मन के लिए एक दीवार बन जाती है। अलग अलग संस्कार भक्ति के मन में छप जाते हैं, तो मन बार बार उन संस्कारों में ही जाता है। तो इसलिए भक्ति का अभ्यास बड़ा पावरफुल है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा ना भी हो, आज भी हम इसी बात पर सुन रहे थे सीनियर भक्तों से कि वेदार्थ, वेदों के सारे अर्थ का प्रकाशन व्यक्ति के हृदय में भगवान के नाम के जप के द्वारा हो जाता है। और नाम उच्चारण करने के लिए कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं, बस इसको जितना हम ध्यान पूर्वक करेंगे, जितना एकाग्रता से करेंगे, निरपराधिक रूप से करेंगे, उतना ही इस प्रकार उसका इस जिन जो शास्त्रों में इसका प्रभाव बताया गया है वो प्रभाव अपने जीवन में भी अनुभव करेंगे। वेदांत सूत्र में इसका वर्णन प्रकाशश्च कर्मण्य अभ्यासात के रूप में हुआ है। इसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बार बार अभ्यास करने से हृदय का जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हम लोगों को बताया है अज्ञान कि इंस्ट्रक्शन दिया कि हमें कम से कम नियमित रूप से 16 माला का जप करना है। तो व्यक्ति कहे क्यों, तो ये मिनिमम अभ्यास है। इस अभ्यास से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमारा हृदय शुद्ध होगा और आगे जाके हमें भगवान की भक्ति का जो सुख है वो मिलने लगेगा और फिर भगवान के नाम रूप गुण हमारे हृदय में प्रकाशित होंगे और फिर हम सहज रूप से भगवान की भक्ति करने लग जाएंगे, यानी भगवान से राग के स्तर पे आ जाएंगे। तब हम बोलेंगे नहीं कि 16 क्यों, तब तो ये बोलेंगे 16,000 क्यों नहीं। तो इसलिए भक्ति में अभ्यास की बहुत जरूरत है ताकि भगवान की अनुभूति हमें प्राप्त हो। इसका उदाहरण नारद जी के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है, जो पहले दासी के पुत्र थे, बिना तो शिक्षित थे ना ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती रहती थी, नारद भी सेवा करते थे और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा स्वयं करते रहते थे। नारद स्वयं कहते हैं, उच्चिष्टले पानुमो अनुमोदितो द्विजय सकृतस्म भुंजे तदपास्त किल्भिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस् तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। श्रीमद् भागवतम के श्लोक में नारद जी अपने शिष्य व्यासदेव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्यकाल में वे चातुर्मास में शुद्ध भक्तों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्चिष्ट भोजन छोड़ देते और ये बालक थालियां धोते समय उच्चिष्ट भोजन को चखना चाहता था, अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उस उच्चिष्ट भोजन को खाता था। फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया और जो जो वह उच्चिष्ट खाता रहा त्यों त्यों वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया। क्योंकि वे महाभागवत भगवान की भक्ति का आस्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, अतः नारद ने भी क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली। नारद आगे कहते हैं, तो अब ये देख सकते हैं कि भक्तों के संग का ये बड़ा प्रभाव है और यही प्रभाव विषयों का संग करने से होता है। जब विषयों का संग करते हैं, उनके दिए हुआ खाना खाते हैं, उनके दिए उनकी बातें सुनते हैं, तो फिर हमारी भी आसक्ति, हमारा भी संग उन्हीं के जैसे होने लगता है। और इसी के विपरीत अगर हम भक्तों का संग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे नारद मुनि ने करा है, तो देखिए दासी पुत्र की क्या शैक्षिक योग्यता थी, कोई योग्यता नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, बस नम्रता से भक्तों का संग किया, भक्तों का श्रवण किया, हरि कथा को सुना। तो देखिए अब कितना ब्राइट फ्यूचर है उसकी, तो एक बद्धावस्था में जीव कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि जब चाहे वो कहीं पे भी जा सकते हैं, भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में भगवान से साक्षात बात कर सकते हैं और भगवान की भक्ति के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक हैं शाश्वत समय के लिए। तो अब ये देख सकते हैं कि उन भक्तों ने नारद मुनि पे कितनी कृपा करी, उसका अंदाज तो नारद मुनि अब अनुभव कर रहे हैं। तो इसीलिए सर्वश्रेष्ठ कृपा है भगवत धर्म की शिक्षा दूसरों को देना। और यहाँ पे इसका फल क्या दिखा रहे हैं कि भगवान के भक्तों की सेवा से कथा में रुचि होनी चाहिए, जगत में रुचि नहीं होनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि साधुओं का संग कर रहे हैं और हमारा भौतिक जीवन बढ़िया चल रहा है, तो हम ना तो सच्चे साधुओं का कर रहे हैं संग, या फिर सच्चे साधुओं का संग कर रहे हैं लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं, ठीक से नहीं कर रहे। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेणा श्रुणवन् मनोहराः ता श्रद्धया मेनुपदं विश्रुण्वतः प्रिय श्रवसंग ममाभवद रुचिः। ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अतः जैसा कि विधान सूत्र में कहा गया है, प्रकाशश्च कर्मण्य अभ्यासात्, जो भगवत भक्ति के कार्य में केवल लगा रहता है उससे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वह सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष अनुभूति है। तो बहुत बार भक्तों के मन में प्रश्न आता है कि हम कैसे समझेंगे भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है या अन्य कैसे साक्षात्कार प्राप्त होंगे। तो उत्तर केवल यही है कि बार बार भक्ति के अभ्यास में लगा रहे, लेकिन इस अभ्यास में प्रयास करें कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है, तो प्रगति बहुत तेज होती है। और थोड़ा सा चित्त की समाहित होना भी जरूरी है। प्रयास करें कि अपने चित्त को अपनी इंद्रियों को भोग में न जाने दे और भगवान में केंद्रित करने का प्रयास करें। जितना अधिक केंद्रित करेंगे उतना तीव्रता से प्रगति होगी और तीव्रता से प्रत्यक्ष अनुभूति भी होगी। धर्मयम शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। नारद वास्तव में दासी पुत्र थे, उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और प्रभुपाद समझा रहे हैं लक्ष्य क्या है। यह लक्ष्य है भक्ति, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्तिरधोक्षजे। समानता धार्मिक व्यक्ति ये नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है, क्योंकि इसी से जीवात्मा को चरम सुख प्राप्त होगा। जैसा कि हम पहले 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैव। सामान्यतः आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है, किंतु यहाँ पर नारद ना तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, नहीं उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके भक्तों के संघ के द्वारा, और सर्वोच्च फल है भगवान की भक्ति। यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त होता है। यह कैसे संभव होता है, इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। आचार्यवान पुरुषो वेदो, महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन ना किया हो। कुछ कमेंट्स तो ये हैं कि वो आचार्य भक्ति के आचार्य होने चाहिए, तब वेदों के सार को व्यक्ति समझ पाएगा, जो कि है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, जिसको भगवद्गीता में स्पष्ट बोलते हैं, भगवान भक्त माम अभी जानाती, वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यम। वेदों का उद्देश्य मुझे जानना और मुझको जान सकते हो भक्ति के द्वारा। तो ये एक प्रभुपाद जी जैसे आचार्य, ये महान आचार्य हैं, जब इनकी शरण में व्यक्ति जाता है तब वो भगवत गीता भागवत को समझता है और तब वो भगवान को समझ पाएगा। भले ही वो व्यक्ति वेदों का अध्ययन ना किया रहे, लेकिन एक महान आचार्य का आश्रय लें जो कि वेदों के सभी ज्ञान में पारंगत हैं, तो उसे भी वेदों का उद्देश्य और सार समझ में आ जाएगा। भक्ति योग अत्यंत सुखकर और सुसुखम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवणम कीर्तना विष्णु रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है, यह प्रामाणिक आचारों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है। अर्थात भक्ति में हम क्रियाओं को परिवर्तित नहीं करते हैं, केवल उद्देश्य को परिवर्तित करते हैं, विषय को परिवर्तित करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, तो ये सब क्रियाएं तो हम सामान्य रूप से करते ही हैं, और ये भक्ति की सबसे प्रबल क्रियाएं हैं, सुनना और बोलना, और उससे सहज रूप से स्मरण होता है। अब आप ये देखिए कि जब हम भगवान की महिमा सुनते हैं तो भगवान के साक्षात संपर्क में आ रहे हैं, बशर्ते हम शुद्ध भक्तों से सुने। तो अब हर प्रकार की इच्छा, चाहे संगीत की इच्छा हो आप कीर्तन सुन सकता है, या दार्शनिक भाषण सुनने की इच्छा हो, दोनों ही के द्वारा व्यक्ति भगवान के संपर्क में आ रहा है और उसके द्वारा वो परम शुद्ध हो जाएगा। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है, ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्छिष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। कथा सुनना अच्छा लगता है, भगवान का प्रसाद खाना तो सभी को अच्छा लगता है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं, चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल, जो कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को वह स्वीकार है, यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए, श्रद्धा पूर्वक। इसीलिए भक्त लोग भोगों को चखते नहीं है, क्योंकि उनकी श्रद्धा है पहले भगवान स्वीकार करेंगे और फिर मैं स्वीकार करूंगा। ये सब श्रद्धा का लक्षण है, प्रेम का लक्षण है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का स्वादन करके सनत कुमार जैसे मानी महान भक्त बन गए, तो सूंघने में क्या नुकसान है, क्या कठिनाई है। अतः भक्ति योग अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। मनुष्य को तो वह प्रेम प्रिय है जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है, प्रेम तो हम करना जानते हैं, बस प्रेम को भगवान की ओर मुड़ना सीखना है और वही भक्ति की प्रक्रिया है। यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है, यह वैसी नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार कहते हैं। यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी यह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए, किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा। तो ये प्रभुपाद यहाँ समझा रहे उस बात पे कि अव्ययम भक्ति अव्यय है, मुक्त अवस्था में भगवान के धाम वैकुंठ धाम गोलोक धाम जाने के बाद भी वही भक्ति कंटिन्यू रहेगी। इस प्रकार की अस्थायी सीमित स्वार्थ में भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहां भी वह भगवान की सेवा में रत हो जाता है, वह भगवान से तदाकार नहीं होना चाहता। तो ये आप समझते ही होंगे अभी तक, तो इतने दिन से अगर आप सुन रहे हैं, कि भगवान की भक्ति का परफेक्शन यही है कि हम भगवान के पार्षद बनकर भगवान के धाम की प्राप्ति करें, ना कि इस जगत में सड़ते रहें। तो भक्त जब भगवान के धाम में जाएगा तब भी भगवान का नाम उच्चारण करेगा, कथा श्रवण करेगा, बस यही है कि उसमें असीमित सुख प्राप्त होगा। हरा आम और पके हुए आम में अंतर यही है कि स्वाद का अंतर होता है, बाकी कोई अंतर नहीं होता है। तो इस समय भक्ति भले उतनी रुचिकर ना लगे, लेकिन अगर हम करते रहेंगे और तो देखेंगे यहाँ पे भी बहुत रुचि उत्पन्न होने लगती है, और आध्यात्मिक जगत में जो की गई भक्ति की जाती है उसका सुख तो हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसा कि भगवद गीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है, अर्थात जब हम गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित होता है, ब्रह्मभूत, तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। समा सर्वेश भूतेशु मद भक्ति लभते पराम, इसे पराम भक्ति बोलते हैं, जिसमें जो कि पूरी तरह से आनंदमय होती है। कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को नहीं समझ पाता। भक्ति के लिए श्रद्धा चाहिए, अनन्य श्रद्धा। तो अन्य योग पद्धतियों को भक्ति कर रहा है, अर्थात उसकी अनन्य श्रद्धा नहीं है, तो करे और उसको धीरे धीरे शुद्ध होगा, तो फिर भक्ति में एक दिन श्रद्धा आएगी। श्रीमद् भागवत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भगवद गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है, तो वह कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा और समस्त गुहिकान का राजा है। यह धर्म का शुद्धतम स्वरूप रूप है और इसे बिना कठिनाई के सुखपूर्व संपन्न किया जा सकता है, अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करे। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे भक्ति की क्रिया से हमारा हृदय शुद्ध होगा तो भगवत संबंधी बातें हमें सहज रूप से समझ में आने लग जाएंगी। और ये बहुत गुई है, क्योंकि व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि भगवान के भक्तों की सेवा करके व्यक्ति किस प्रकार से प्रगति करेगा। तो ये प्रगति जो है ये भगवान की प्रसन्नता के ऊपर निर्भर करती है, ये बहुत गुहित बात है। अन्य योग पद्धतियों में व्यक्ति अपना प्रयास से सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, और भक्त जो है भक्ति मार्ग में भगवान को प्रसन्न करके प्रगति करता है, और ये प्रसन्नता होती है जब गुरु प्रसन्न होते हैं। तो गुरु भी प्रसन्न होते हैं जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो ये बहुत गुह्य है, ज्ञान है। इसके ऊपर मैं प्रयास करूंगा, आचार्यों की भी कमेंट्री करूं, तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।